आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज एक दिवसीय दौरे पर होगा मथुरा आगमन। श्री बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का करेंगे शुभारंभ। आयोजन में शामिल होंगे 80 से अधिक देशों के लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को दी मंजूरी। MBBS और PG सीटों को 5000 से अधिक बढ़ाने का भी लिया निर्णय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से GST रिफॉर्म पर किया संवाद। कहा, महंगाई से राहत देगा सरकार का ये कदम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर मथुरा और वृंदावन आ रही हैं। वह वहां के श्री बांके बिहारी मंदिर के साथ अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। उनके दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन छटिकरा आएंगी। श्रीमती मुर्मू वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, निधिवन राज मंदिर और कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगी। साथ ही सुदामा कुटी में संत सुदामा दास की भजन कुटी का लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस आयोजन में 80 से अधिक देशों के लोग शामिल होंगे। इस संस्करण में 5 लाख से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद है।
पिछले बार 2200 करोड़ का लगभग जो आंकड़ा आया था, इस बार 5000 करोड़ से कम का व्यापार नहीं होगा। 5 लाख से अधिक फुटबॉल होगा और जिस तरह से प्रचार प्रसार इस बार हुआ है, लोगों में चर्चा है। क्योंकि तीसरा संस्करण है तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्पादक हैं, उद्यमी हैं, उनको एक नया बाजार मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के माध्यम से भारत को मीडिया और मनोरंजन का वैश्विक केंद्र बना रही है।
नरेंद्र मोदी सरकार का दृष्टिकोण भारत की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर उसे वैश्विक नेता बनाने का है। इस दृष्टिकोण का एक हिस्सा मुंबई में इस साल 1 से 4 मई तक आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का पहला संस्करण था। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के रचनाकारों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। वेव्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान दे सकती है।
भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में GDP में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है।
विविध चुनौतियों और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वेव्स ने भारत के मीडिया और मनोरंजन के भविष्य पर स्थायी प्रभाव डाला है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
लखनऊ में कल प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस वर्ष विशेष पहल करते हुए छात्रवृत्ति समय से पहले देने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष एक विशेष पहल की है। इसके अंतर्गत अब तक फरवरी मार्च माह में मिलने वाली छात्रवृत्ति अब नवरात्र और सितंबर माह में वितरित की जाएगी। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 59 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली थी, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक हो जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _JGP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी दी गई। बोनस का लाभ 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मिलेगा।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उत्तर रेलवे लखनऊ के कर्मचारी विभूति मिश्रा ने बोनस की घोषणा पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
रेलवे कर्मचारी उनके पक्ष में बड़ा अच्छा डिसीजन है, इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि इस कदम से जो है कहीं ना कहीं मार्केट में भी थोड़ा बूम आने का काम होगा, लोग परचेजिंग करेंगे और जो अभी GST दर केंद्र सरकार ने कम करी है उसका फायदा लोगों को मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इससे 5,000 स्नातकोत्तर और करीब 5,000 MBBS सीटें बढ़ाई जा सकेंगी। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं। नए सुधारों के अंतर्गत GST परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की 4-स्तरीय संरचना को अब 5% और 18% की 2-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने आम लोगों के खर्च में कमी लाने के लिए खाद्य उत्पादों पर GST दर में बड़ी कटौती की है। बादाम, हेजलनट, खजूर और अंजीर जैसे सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी तरह मधुमेह मरीजों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए विशेष आहार उत्पाद पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही घर में पोषण बेहतर हो इसके लिए सूखे मेवों पर GST की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। नए GST सुधारों के तहत यह बदलाव देश भर में लोगों को रोजाना पोषण सुनिश्चित करने और स्वस्थ आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोहन के साथ आदित्य प्रताप, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के हजरतगंज में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात कर GST रिफॉर्म को लेकर संवाद किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में GST में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। इसका लाभ हरेक तबके को प्राप्त हो रहा है। इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है।
नवरात्र के चौथे दिन आज प्रदेश भर में मां भगवती के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की कतार लग गई है। जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज एक दिवसीय दौरे पर होगा मथुरा आगमन। श्री बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का करेंगे शुभारंभ। आयोजन में शामिल होंगे 80 से अधिक देशों के लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को दी मंजूरी। MBBS और PG सीटों को 5,000 से अधिक बढ़ाने का भी लिया निर्णय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से GST रिफॉर्म पर किया संवाद। कहा, महंगाई से राहत देगा सरकार का ये कदम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।